नमस्कार, स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं जनसत्ता पॉडकास्ट। वक्त है जानने का खेल जगत की खबरें। पिछले सप्ताह लुसानी डायमंड लीग जीतने वाले ओलंपिक भाला फेंक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने सोमवार को कहा कि अगस्त में होने वाली विश्व चैंपियनशिप से पहले शारीरिक और मानसिक फिटनेस पर फोकस रहेगा, लेकिन 90 मीटर की बाधा पार करने का कोई दबाव नहीं है। मांसपेशियों में खिंचाव के कारण तीन शीर्ष स्पर्धाओं में भाग नहीं लेने वाले चोपड़ा ने डायमंड लीग के लुसानी चरण में वापसी करते हुए पिछले सप्ताह 87.66 मीटर की दूरी के साथ लगातार दूसरी बार शीर्ष स्थान हासिल किया। उन्होंने 5 मई को दोहा में अपने करियर के चौथे श्रेष्ठ 88.67 मीटर के थ्रो के साथ सत्र की शुरुआत डायमंड लीग जीती थी। उन्होंने भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा कराई गई वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, शारीरिक और मानसिक रूप से दोहा की तुलना में लुसानी में काफी कठिन था, क्योंकि बीच में चोटिल होने के कारण पूरा फोकस उस पर रह गया था। सत्र के बीच में चोट लग जाने पर रिकवरी पर फोकस चला जाता है। उन्होंने कहा, बीच में मैंने 3 कॉन्टिनेंटल गोल्ड स्तर के टूर्नामेंट छोड़े जहां मौसम अच्छा था और मैं 90 मीटर की बाधा पार कर सकता था, लेकिन इसका कोई दबाव नहीं है। अभी एशियाई खेल और विश्व चैंपियनशिप होनी है, तो जिस दिन परिस्थितियां बनेंगी 90 मीटर का थ्रो लग जाएगा। लुसानी के मौसम को देखते हुए प्रदर्शन अच्छा रहा। डेनमार्क के ग्रैंड मास्टर यूनास जेर ने सडन डेथ मुकाबले में अपग्रेड मुंबा मास्टर्स के जोवाखीर सिंदारोव को हराकर त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स को पहली ग्लोबल शतरंज लीग GCL का खिताब दिलाया। 3 चरण के टाई ब्रेक के जरिए विजेता का फैसला किया। रैपिड बाजी के 2 दौर ड्रॉ रहे, जबकि इसके बाद बिल्ड्स बाजी के 2 दौर भी बराबरी पर छूटे। चैंपियन का फैसला अंततः सडल डेथ बिल्ड्स बाजियों की श्रृंखला के साथ हुआ, जहां चौथी बाजी में फैसला आया। टूर्नामेंट के सबसे अनुभवहीन खिलाड़ियों में शामिल रहने के अलावा अपने अधिकांश मुकाबले गंवाने वाले जेर ने हालांकि सबसे महत्वपूर्ण लम्हे पर टीम के लिए जीत दर्ज की। जेर ने रविवार रात की जीत के बाद कहा, अंतिम बाजी बेहद तनावपूर्ण थी, ये बेहद रोमांचक था, मैं अब भी कांप रहा हूँ। लेवोन ओरिनियम टीम कप्तान ने मुझे कहा कि आप संघर्ष करो, अगर आप इस बाजी को जीतते हैं तो आप प्रतियोगिता जीत जाओगे। इस महत्वपूर्ण जीत से जेर ने न सिर्फ अपनी टीम के लिए खिताब जीता, बल्कि $5 लाख की इनामी राशि भी टीम को मिला। टूर्नामेंट की कुल इनामी राशि $10 लाख थी। एशेज सीरीज में लॉर्ड्स टेस्ट जीतकर 2-0 से आगे होने के बाद ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा। पैट कमिंस की अगुवाई वाली टीम को आगे दिग्गज स्पिनर नेथन लायन की सुविधा नहीं मिल पाएगी। वह पिंडली की चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए। वह दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन फील्डिंग करते हुए चोटिल हो गए थे। इसके बाद वह पूरे टेस्ट मैच में गेंदबाजी नहीं कर पाए। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में वह लंगड़ाते हुए बल्लेबाजी करने आए थे। इस दौरान मिचेल स्टार्क के साथ 15 रन की साझेदारी, दर्द के बाद बल्लेबाजी करने उतरने के लिए लियोन की तारीफ हुई। बता दें कि लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मुकाबला नेथन लायन का ऑस्ट्रेलिया के लिए लगातार 100वां टेस्ट था। उनसे पहले केवल 5 खिलाड़ी ही ऐसा कर सके थे, एलिस्टियर कुक, एलन बॉर्डर, मार्क वॉ, सुनील गावस्कर और ब्रेंडन मैकुलम ही लगातार 100 टेस्ट खेले हैं। लगातार 100 मैच खेलना बताता है कि खिलाड़ी का प्रदर्शन ही नहीं, फिटनेस भी शानदार रही होगी। लियोन ने 122 टेस्ट की 128 पारी में 496 विकेट लिए। आगे सीरीज में बतौर स्पिनर ऑस्ट्रेलिया को उनकी कमी खल सकती है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर रविवार को भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन से मिलने दिल्ली स्थित उनके घर पहुंचे। दोनों की मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, जिसके बाद लोगों ने अनुराग ठाकुर को धरना देने वाले पहलवानों की याद दिलाई। अनुराग ठाकुर ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी भाजपा के आउटरीच प्रयासों के तहत शिखर धवन से मुलाकात की। मुलाकात के बाद हमने शिखर जी को सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया और उनका तथा खेल समुदाय का समर्थन मांगा। पिछले 9 वर्षों में मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान भारत ने खेलों में 360 डिग्री बड़ा बदलाव देखा है। कई लोगों को अनुराग ठाकुर के इस कदम को गलत बताया। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि अनुराग ठाकुर को केवल क्रिकेटर्स के साथ ही संपर्क करना पसंद है, वह पहलवानों से मिलने में दिलचस्पी नहीं रखते। कुछ समय पहले तक धरने पर बैठे पहलवानों को खेल मंत्री से मिलने उनके घर जाना पड़ा था। वहीं जंतर मंतर पर इन खिलाड़ियों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया था, तब भी खेल मंत्री ने कोई बयान नहीं दिया। इसराइल और स्पेन ने पेरिस ओलंपिक 2024 की पुरुष फुटबॉल स्पर्धा के लिए क्वालिफाई कर लिया, क्योंकि इंग्लैंड ने अंडर-21 यूरोपीय चैंपियनशिप क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। यूक्रेन ने फ्रांस को आखिरी क्वार्टर फाइनल में 3-1 से हराया। फ्रांस मेजबान होने के नाते ओलंपिक के लिए स्वतः क्वालिफाई कर चुका है। इसराइल और स्पेन ने अंडर-21 यूरो के जरिए क्वालिफाई किया। इंग्लैंड ने रविवार को पुर्तगाल को 1-0 से हराया था, लेकिन ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेगा। ब्रिटेन की ओलंपिक टीम में उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स भी पुरुष फुटबॉल में शामिल हैं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। ये पॉडकास्ट यहीं खत्म होता है। अगले बुलेटिन तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।